अब यहां दो खंभे खड़े कर दो और बढ़ई आरा लेकर के यहां आए और मेरे मस्तक को दो भागों में चीर दें। जिनके लिए मैं सर्वदा से प्रिय रहा हूं उन्हें भी कोई कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, कोई कड़वे वचन नहीं बोलना ये ब्राह्मण देवता को, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं आदर पूर्वक दे रहा हूं, तो अनादर नहीं करना इन ब्राह्मण का। वार्धकी का समायांतु करपत्र समन्विता गौस्तंभ रोपयन तत्र भिन्दन्तो मम मस्तकम् ये साम प्रियोम सततम तैर्णवाच्यम दूषणम। उस समय उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सभी मंत्री और ब्राह्मण भयभीत हो उठे और उनका शरीर कांपने लगा। अब बोल भी नहीं सकते कुछ, लेकिन जो है ना कांपने लगे। तस्य वाक्यम हिते श्रुत्वा प्रधानाश्च द्विजास्तदा कंपिताश्च भयायुक्ता बभूवर्नृपस्तम। ये दया परवश होकर कहने लगे, ये काल के समान हमारे राजा के प्राणों का अपहरण करने वाला ब्राह्मण कहां से आ गया, ये तो बड़ा निर्दयी है, हैं? आपस में कह रहे हैं लेकिन ब्राह्मण से नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, आपस में तो निंदा करे, कहां से आ गया ये हमारे राजा का प्राण ले रहा है। प्रब्रवंता सकरुणम कुतः काल निबोध जहां आगता प्राण हरणो राज्योस्माकम ही निर्दयः। हम लोगों ने बहुत से याचक देखे हैं, ऐसा याचक नहीं देखा है, परंतु ऐसा याचक कभी भी सामने नहीं आया। भला ऐसा कौन निष्ठुर और निर्लज्ज याचक होगा, शर्म भी नहीं आती है, मांगने में शर्म नहीं आती, जो राजा के सामने आकर उनके शरीर की याचना करता है। भावो याचका दृष्टांतो न कदाचन राज्योदयम याचित हो निर्दयो निरपत्र। संसार में मांस भक्षी सिंह ही प्रसिद्ध है, परंतु ये तो मनुष्य है, जाति का भी ब्राह्मण है और ज्ञान संपन्न भी है, फिर भी ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर भी ऐसा स्वार्थ परायण कैसे हो गया। अच्छा, हम लोग इस विषय में उपाय ही क्या कर सकते हैं, जो होनहार होगा वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि जो कार्य अवश्यंभावी है उनके प्रतिकार का कोई उपाय है ही नहीं। इधर हमारे महाराज सत्यवादी हैं और अतिथि सत्कार के प्रेमी हैं, ऐसी दशा में इन्हें भी कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जाए। अब ये मंत्री और ब्राह्मण लोग सभा के जो है फिर क्या करें। प्राचीन काल में जैसे भगवान विष्णु वामन रूप से राजा बलि के यहाँ उनके यज्ञ के अवसर पर पधारे थे, उसी तरह वे भी वही भगवान विप्रवेश में हमारे मंडप में आए हैं। क्या लगता है वही भगवान आए हैं क्या, वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में आए हैं, लगता है वही भगवान आए हैं क्या। हम लोग इस ब्राह्मण को श्री हरि के रूप में ही समझ रहे हैं। किमयम विप्र रूपेण पुरा प्राप्तो यथा बलिम वामनो यज्ञ समये यथा विद्मो हरिम द्विजम। जब ये ऐसी बातें कहने लगे तब राजा ने उन्हें ऐसा कहने से मना कर दिया, राजा ने मना किया कि निंदा ना करो। फिर राजा मयूरध्वज ने अनेक प्रकार के दान किए जिससे उन्हें बहुत हर्ष प्राप्त हुआ। एवं वदन्तस्ते सर्वे तदारा ज्ञान निवारिता ततो नृपो हर्षितो अभूम दत्त्वा दानान्यनेकशः। उस समय वहां बढ़ई आ गए, उन्होंने दो खंभे खड़े कर दिए और उनके ऊपर एक काष्ठ है तिरछा रखकर उसने रस्सियों से दृढ़ता पूर्वक बांध दिया। रायता वार्धकी का स्तंभ द्वारोपितो हितय तिर्यक काष्ठम कृतम चैकम दृढ़म बद्धम चरज्जु भीम। तब सबकी आंखों के सामने ही स्वयं राजा मयूरध्वज ने हर्ष पूर्वक अपने मस्तक पर आरा रखने का आदेश दिया। कैसे, ऐसे मतलब सीधा ऐसे काटा जाएगा, ये दोनों आंखें अलग अलग हो जाएंगी, और जो है दोनों सीने अलग अलग हो जाएंगे, दोनों पैर हाथ अलग अलग हो जाएंगे। बीच से आरा जो है ना रखवाया राजा ने। आज देश है तदा राजा करपत्रम समस्त के धर तुम स्वयं हर्षियुतः सर्वे सामेव पश्यतम। उस समय राजा ने उन ब्राह्मण का चरण धोया, किसका, भगवान कृष्ण का चरण धोया और जल को सिर में चढ़ाया और यूं कहना आरंभ किया, अब यज्ञ नायक भगवान गोविंद मेरे शरीर के अर्ध भाग से प्रसन्न हो जाएं। छालयित्वा विप्रपादो राजा वचनम अम्रवीत शरीरार्धेन गोविंदा प्रियताम यज्ञ नायकः। हमारे कुल में उत्पन्न हुए शुभाकांक्षी मनुष्यों को चाहिए कि वे इसी प्रकार सभा में उपस्थित हुए ब्राह्मण के कार्य के लिए अपना यौवन और धन दान करें। राजा ने फिर यही कहा, हमारे कुल में जितने भी आगे होंगे राजा, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए ब्राह्मण के लिए। अस्मत् कुले प्रसूतानां नराणां समिच्छतां सभायां विप्रकार्य ही दत्तां यौवनं धनम्। हे महाराज, अब मैं अपना शरीर चिरवा रहा हूँ, आप चिरे हुए मेरे शरीर के आधे भाग को ले जाइए, उससे वे भगवान नरसिंह परम संतोष लाभ करें। गृहाण विप्रभिन्नम मे शरीरार्धम केशरे संतोषम परमम या तो भिन्नद्धि तुम कलेवरम। अरे मल्लो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तुम लोग रेशम की डोरी से बंधे हुए मेरे शरीर पर रखे हुए आरे को बलपूर्वक खींचो, विलंब मत करो, खींचो आरे को, जिससे ये ब्राह्मण शीघ्र ही लौट जाए। रे रे मल्ला मया ज्ञप्ता कर संतोष बलान मम गात्रम बद्धम पट्ट गुण माचरम या तो भूसु रहाम। इस भूतल पर उत्पन्न हुए मुझको इन ब्राह्मण देव ने धन्यवाद का पात्र बना दिया, अब यहाँ उपस्थित सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। धन्योस्मिन् भूतले जातो ब्राह्मणे ना मुना कृतः श्रणवन्तु लोका सकला भाषितम मम साधरम। जिन प्राणियों के देह और धन राशि परोपकार के कार्य में लगती है, उसी को स्थिर समझना चाहिए, क्योंकि दान रहित होने पर तो ये शोचनीय अवस्था हो जाती है। इसलिए मेरी इस दशा को देखकर सभी सदों को परम आनंद मनाना चाहिए। परोपकृत ये साम शरीरम वित्त संग्रह याति यत्तत्स्थितं शोचम उभयम् दाने वर्जितम तस्मात् प्रहर्षः कर्तव्यो माम निरीक्षय सभासदे। उस समय राजा की ये दशा देखकर सारे राज्य में हाहाकार मच गया। देखो, सारी प्रजा क्रौंच पक्षियों के झुंड के समान जगह जगह एकत्र होकर चीख चीख कर रोने लगी। पूरे राज्य की प्रजा रो रही है। हाहा भूतम तदा राष्ट्रम वीक्ष राजानमेव च क्रंदमानम संजातम कुररे गणसन्निभम। राजन, तब राजा मयूरध्वज की सुंदरी रानी कुमुदवती ब्राह्मण के सामने हर्ष पूर्वक राजा से कहने लगी, देखो राजा की पत्नी भी सन्यासी है, वो प्रसन्न होकर के ब्राह्मण से कह रही है। महेश इतस्तपदे समागत्या ब्रवीण नृपम विप्रस्य पुरतो हृष्टा रम्या राजन कुमुदवती। रानी का नाम क्या है, क्या नाम है? कुमुदवती। प्रसन्न होकर के कहती है रानी, बोली राजन, मैंने सुना है कि आप अपने शरीर का अर्ध भाग ब्राह्मण को देना चाहते हैं, सो आपका अर्धांग तो मैं ही हूं। देखो, रानी कहती है, कितना दिमाग लगाया उसने रानी ने, आप आधा भाग देना चाहते हैं तो आधा भाग तो मैं हूं, क्योंकि मैं आपकी भार्या हूं, अतः आप मुझे ब्राह्मण को देकर अपने वचन को सत्य कीजिए, तो कटवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा तो मैं पूरा ही आपका आधा भाग हूं, तो मुझे दे दो, काटने की भी जरूरत नहीं है, मुझे दे दो ब्राह्मण को। राजन विप्राय देहार्धम त्वया देयम् मया श्रुतम् तवार्ध गात्रम भार्यास्मि माम दत्त्वा सत्यवाग् भवम्। दान तो सभी, दान भी तो सजीव का दिया जाता है, जिंदा का दान दिया जाता है, आपका शरीर चीरे जाने से निर्जीव हो जाएगा, साथ ही मेरा तो ऐसा विचार है कि दूसरे द्वारा विदीर्ण किए हुए मांस को शेर भी नहीं खाते हैं, तो मुझे वैसे ही दे दो बिना चीरे हुए। सजीवम दीयते दानम भिन्नम ते गत जीवितम परेण भिन्नम पंचाशो न गृहणाति मतिर्मम। आर्य, इसके अतिरिक्त यदि चतुर्थांश ही देना हो तब तो आपका शरीर चीरा जाए, क्योंकि अर्धांग तो मैं ही हूं, पर आपके अर्धांग के दो भाग करने पर संपूर्ण शरीर का चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है ना? अगर अगर मेरे अगर मुझे चीरेंगे तो फिर तो चौथाई हिस्सा हो जाएगा, इसलिए मेरा पूरा शरीर जो है ना आपका आधा हिस्सा है, तो अगर मुझे चीरा जाएगा तो फिर तो चौथाई रहा ना, तो इसलिए कहती है कि मुझे चीरो नहीं, मुझे ऐसे ही दे दो बिना चीरे दे दो। परंतु वह सिंह तो आधा भाग मांग रहा है, अतः वह अर्ध भाग स्त्री रूप में मुझे ही समझो। तुर्यांतो यदि देयो हि भवेद् भग्नम् यदि वपुम अर्धम प्रार्थयते सिंहा स्त्री रूपम विद्धि मारिष। अच्छा अच्छा, वो पत्नी ये कह रही है कि आधा हिस्सा तो मैं हूं, तो आधे आप रहे, तो अगर आपको चीरा जाएगा तो फिर तो आपका चतुर्थांश हुआ, चौथा हिस्सा हुआ, तो आप मुझे दे दो तो आधा भाग हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, आधा मैं हूं और आधे आप हो, तो आपको चीरा जाएगा तो फिर तो चौथा ही रहे ना आप। पत्नी कह रही है, साथ ही जो स्त्री अपने प्राणनाथ के सामने ही मृत्यु को प्राप्त होती है उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्राणनाथस्य पुरतो या नारी मृत्यु मां ब्रजेत उत्तमं गतिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणम्। कुमुदवती की वह बात सुनकर और राजा को एकाग्र मन से कुछ विचार करते जानकर हाँ ये ब्राह्मण देवता तत्काल बोल उठे कि अब तो गड़बड़ हो रहा है, तुरंत भगवान किसने बात को बदली, अब सब गड़बड़ हो रहा है अभी तो। एकाग्र मन संज्ञात्वा राजानं वाक्यं कोविदा। फिर राजा मयूरथ विचार करने लगे कि ठीक कह रही है, तो तुरंत उन्होंने बात को बदली। भगवान ने क्या कहा, राजन सिंह ने कह दिया था कि राजा का वामांग स्त्री है, अरे बायां हिस्सा होती है स्त्री, शेर ने कह दिया था बाया है तो नहीं चाहिए मुझे दक्षिणांग ही देना चाहिए, मैं वामांग को कैसे ले सकता हूँ, सेने का बाया है तो मैं थोड़ी लूंगा। सिंहेन कथितम राजन वामांगम मिस्त्री महीपते दक्षिणांगम प्रदेयम मैं वामांगम नियते कथम। इसलिए उस सिंह को देने के लिए आप अपने शरीर का दक्षिणांग ही मुझे प्रदान कीजिए, यदि कदाचित आप नहीं देंगे तो निराश होकर मैं उस शेर के पास लौट जाऊंगा, नहीं देना तो मत, तो वो नहीं चाहिए हमको। शरीरम दक्षिणांगम में दातुम सिंहाय चारसे कदाचित कदाचित तुम निराशो यामी तम प्रतिम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन उस सिंह ने ही मुझे आपके पास भेजा था, उसके पास जाकर मैं उससे कह दूंगा कि राजा अपना दाहिना भाग नहीं देना चाहते, अब तुम सुखपूर्वक मेरे पुत्र को खा लो। राजा नहीं देना चाहते, मेरे पुत्र को खा लो, मैं शेर से कह दूंगा, ठीक है। राजन सामीप्यं तव सुब्रत गत्वा तं कथयिष्यामि पुत्रं भक्षे दासकम्। जिस समय ब्राह्मण ऐसी बातें कह रहा था और सभी सभासद उसकी बातें सुनते हुए वो कौतुक देख रहे थे, उस समय राजकुमार ताम्रध्वज अत्यंत हर्षित होकर उस ब्राह्मण से कोमल वाणी में बोला। उस समय ताम्रध्वज परमानंद में मग्न होकर अपने पिता की कीर्ति का संपादन करना चाहता था, अब पुत्र बोलता है, अब देखो पुत्र क्या बोलता है। ताम्रध्वज ने कहा, महाराज जो पिता है वही पुत्र है, है? ये सनातनी श्रुति है, इसलिए यदि मेरे पिताजी ने अपने शरीर का आधा भाग ब्राह्मण को देने के लिए प्रतिज्ञा की तो पिता के शरीर का संपूर्ण आधा भाग पुत्र ही होता है, तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं आधा भाग हूं अपने पिता का। यो वै पिता सपुत्रो ही सुधीरे सा सनातनी ब्राह्मणार्थे ही मत पित्रा शरीरार्धम समर्पितम शरीरार्धम समग्रम हे पितुर भवति पुत्र कहा। महाबुद्धे मान से हृष्ट पुष्ट मुझ तरुण को देखकर मृगराज सिंह भी प्रसन्न हो जाएगा और मुझ पुत्र को भी महान यश की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भीष्म और परशुराम आदि ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने से उत्तम यश प्राप्त किया था। तब ब्राह्मण ने कहा, अब ब्राह्मण यानी भगवान बोले, अब देखो क्या भगवान की बात, देखो कैसी बातें बना देते हैं भगवान। भगवान बोले, बेटा तू सत्य कह रहा है परंतु उस सिंह के वचन को भी तो सुन। उसने कहा था कि तुम पुत्र और पत्नी से भिन्न मयूरध्वज के मस्तक का वो दाहिना भाग ले आना जो उनके शरीर से फाड़कर दो भागों में विभक्त किया हुआ होगा, ठीक है, ये कहा था शेर ने। तब बताओ मुझ जैसा व्यक्ति उस कथन के विपरीत कैसे कर सकता है, और शेर नहीं लेगा तो फिर क्या फायदा मेरे जाने से। तो अब मयूरध्वज ने अपनी पत्नी और पुत्र को मना कर दिया और उन महात्मा ब्राह्मण के सामने अपने उन दोनों स्त्री और पुत्र के हाथ में आनंद पूर्वक आरा दे दिया। देखो एक तरफ अपनी पत्नी को खड़ा किया और दूसरी तरफ अपने पुत्र को खड़ा किया, तुम दोनों मुझे क्या करो, चीरो। फिर स्वयं धैर्य पूर्वक केशव राम नरसिंह आदि भगवान नामों का जप करने लगे। उस समय इंद्र सहित समस्त देवता राजा की उस दशा को देख रहे थे, सब देवता लोग देख रहे थे। तदासनो वारे त्वा प्रियाम सुतम तयो करे ददो राजा कर पत्रम दानवित स्त्री पुत्र यो पुरस्तस्य ब्राह्मणस्य महात्मन जपन केशव रामे तेन सिंहे तेज धैर्यदाम दृशुतम तथा भूतम सर्वे देवा सभा सभाम। जिस समय उन महात्मा राजा के मस्तक पर आरा रखा गया उस समय सत्पुरुषों के मन में बड़ी ग्लानि हुई और समस्त नागरिक दुख में डूब गए। राजा की आज्ञा से एक ओर रानी ने और दूसरी ओर पुत्र ने आर्य को पकड़ लिया। तब रानी राम राम का गान करती हुई वहां उपस्थित सभी लोगों के सुनते हुए ब्राह्मण से कहने लगी, हे महाराज, अब मैं अपने पति को चीरती हूं। देखो रानी कह रही है, पूर्व काल में जैसे भगवान नरसिंह ने अत्यंत कुपित होकर खंबे को फाड़ डाला था और उससे प्रकट होकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कर दिया था, उस तरह मैं भी अपने महाबुद्धिमान स्वामी को चीर डालूंगी। राजा ने कहा, प्रिय, अब देखो राजा देखो अपनी पत्नी से क्या कहता है। जैसे केतकी का कोमल पत्ता शरीर पर रखे जाने से सुख देता है, उसी तरह तुम्हारे हाथ में स्थित ये आरा भी मुझे सुख दे रहा है। अतः अब तुम समागम के समय नखों से छत विच्छत करने की तरह निस्तंक होकर आरे से मेरे मस्तक को चीर डालो। प्रिय, जैसे उस समय नखों द्वारा खरोंचने से मुझे पीड़ा नहीं मालूम देती थी, उसी तरह आज इन कमल के समान कोमल आरे के दांतों से मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। यथा तत्र न मे पीड़ा जायते चानखे प्रिय तथा दय कर पत्र सहदंत कोमल कोमल। तब पुत्र सहित रानी कुमुदवती ने श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों के सामने ही आर्य से राजा मयूरध्वज के मस्तक को विदीर्ण कर दिया। अभी मस्तक जो है ना यहां तक आया, मतलब आरा यहां गले तक आया था तो मस्तक कट गया बीच से। तथा तस्य भूपस्य मस्तकम पत्र संयुता विभेद कर पत्रेण समक्षम कृष्ण पार्थयो। मस्तक के फटते ही महान हाहाकार मच गया। उस समय राजा के बाएं नेत्र में आंसू छलक आए। अब देखो बाएं नेत्र में आंसू गिरे राजा के। ये देखकर उस ब्राह्मण ने जिनका मस्तक विदीर्ण हो गया था, जिनके नेत्रों की पुतलियां उलट गई थी, उन राजा से कहा, तुम रोते हुए दान कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे शरीर को नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि विद्वान पुरुष अश्रद्धा से दिए गए दान को स्वीकार नहीं करते। तुम रो रहे हो, मैं तुम्हारा शरीर नहीं लूंगा। अब पुत्र के नाम मिलने के कारण मेरा स्वर्ग का मार्ग रुक गया है, सो भले ही रुका रहे, सिंह भी मेरे बालक को लेकर अपने स्थान को चला जाए। परंतु जब यह राजा बाएं नेत्र से आंसू बहाकर अपने आधे देह का दान कर रहा है, तब मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर ऐसे दान को कैसे ग्रहण कर लूं। देखा कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं भगवान है? इतनी बात कहकर जनार्दन ने राजा का परित्याग कर दिया, अर्जुन को साथ लेकर सबके देखते देखते वहां से चल दिए। मुझे नहीं लेना। हे भगवान। ब्राह्मण को जाते देखकर सती साध्वी सुंदरी कुमुदवती ने राजा के फटे हुए मस्तक को अपने दोनों हाथों से थामकर पति देव से कहा, फटे हुए सिर को जोड़ दिया और पति से बात किया उसने रानी ने। अब रानी क्या कहती है? कुमुदवती बोली, ये ब्राह्मण देव अब मेरे द्वारा चीरे हुए आपका परित्याग करके जा रहे हैं नाथ, आधे शरीर की याचना करने वाले उन जाते हुए ब्राह्मण को रोको। सिर को जोड़ दिया और बोली कि रोको इनको, क्योंकि आपको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यदि दान लिए बिना ही चले जाएंगे तो आपकी कीर्ति निष्फल हो जाएगी। तो राजा ने कहा, भद्रे, तुमने मेरे फटे हुए मस्तक को पुनः अपने हाथ से थाम लिया है, इसलिए मेरे घर से विमुख होकर वन को जाते हुए उस ब्राह्मण से मैं अभी बात कर सकता हूं। अब मैं बुला सकता हूं उसको, तुमने जोड़ दिया ना मेरे सिर को, तो मैं बात कर सकता हूं। भिन्नम त्वया धृतम भद्रे मस्तकम मामकम पुनः ततो ब्रवीमि विप्रेन्द्रम व्रजन्तम काननम गृहाम। अब ब्राह्मण से बोले, मुनि श्रेष्ठ, मत जाइए, लौट आइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए तब जाइए। मेरे बाएं नेत्र में जिस कारण से आंसू आया है वो बता रहा हूं कि दुख के कारण आंसू नहीं आया, बाएं नेत्र से। ब्राह्मण, मैंने सोचा कि मेरा दाहिना शरीर तो ब्राह्मण के कार्य में लग जाएगा, इसलिए इसका तो उत्तम उपयोग हो गया, परंतु मेरा बायां शरीर पृथ्वी में गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, इसी कारण से बाई आंख से आंसू गिरा है। देखो दाहिनी आंख से आंसू नहीं गिर रहा है, क्योंकि खुशी है, दाहिनी आंख में खुशी है, कि ब्राह्मण के कार्य आएगा, लेकिन बायां अरे जो है ना बेकार जा रहा है, इसलिए बाई आंख से आंसू गिर रहा है। दक्षिणांगम ब्राह्मणार्थे मदीयम साधु संगतम मामांगम पतितम भूम प्रथायाति तिरोदितम। देखो कैसा सन्यासी, ये राजा कितना बड़ा सन्यासी है। विप्रवर, मुझे तीखे आरे से चीरे जाने पर भी वैसी व्यथा नहीं मालूम हुई जैसी यहाँ अपने बाएं अंग के ब्राह्मण से विमुख हो जाने से हो रही है। आरे से चिरने पर मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात का कष्ट हो रहा है कि बायां शरीर जो है मेरा ब्राह्मण की सेवा में नहीं लग रहा है। राजा की ऐसी बात सुनकर परमेश्वर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए, अब प्रसन्न हुए। देखा कितनी कठिन है भगवान को प्रसन्न करना, कितनी कठिन परीक्षा है भगवान लेते हैं। प्रसन्न हुए और राजा के सन्निकट अपना असली स्वरूप प्रकट करके उन्होंने राजा को दर्शन दिया। इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रसन्नः परमेश्वरः आत्मनो दर्शयामास स्वरूपं भूप सन्निधौ। उस समय कमल लोचन श्री कृष्ण ने उस वीर राजा का आलिंगन करके कहा, राजन उत्तम व्रत का पालन करने वाले मयूरध्वज तुम धन्य हो। महाबाहो, मैंने और अर्जुन ने बहुत प्रकार से तुम्हारी परीक्षा कर ली है, अब तुम अपने पुत्र तथा पत्नी सहित अपना यज्ञ पूर्ण करो। राजन, यद्यपि मैं और अर्जुन दोनों ही बड़े बड़े वीरों को मत डालने की शक्ति रखते हैं, फिर भी तुम्हारे पुत्र ताम्रध्वज ने संग्राम भूमि में हम दोनों को संतुष्ट करके सेना सहित मूर्छित कर दिया था। तुम्हारे पुत्र ने हम दोनों सेना सहित मूर्छित कर दिया, भला इस संसार में मेरा दर्शन हो जाने पर प्राणियों को दुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। महामते, महान आत्मबल से संपन्न तुमने मेरे कहने से अपने शरीर का आधा भाग प्रदान कर दिया है, अतः मैं तुम्हारे यज्ञ में कर्मचारी होकर काम करूंगा। देखा भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे यज्ञ का कर्मचारी होकर के काम करूंगा, नौकर, तुम्हारे यज्ञ का नौकर बनकर काम करूंगा तुम्हारे यज्ञ में, क्योंकि एक तो मैं यूं ही भक्त पराधीन हूं और दूसरे तुम्हारे पुत्र ने मुझे संग्राम भूमि में जीत लिया है, तो दोनों प्रकार से मैं हारा हूं। तुम्हारे पुत्र ने हराया मुझे और वैसे भक्त के सामने तो मैं हारता हूं हमेशा, तो तुम्हारे यज्ञ का कर्मचारी बन जाऊंगा। अब तुम स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर के घोड़े को भी ले लो और दोनों घोड़ों की अग्नि में आहुति देकर सुंदर कीर्ति प्राप्त करो। तब मयूरध्वज ने कहा, सर्वव्यापक प्रभु, आपका जो उत्कृष्ट धाम और विस्तृत पद बाहर संसार में व्याप्त था, वही मेरे शरीर को विदीर्ण करके उसमें प्रविष्ट हो गया है। धाम ते परमं विष्णु पदम चा बहुलं प्रभो भिन्नम कृत्वा शरीरम में प्रविष्टम यद् बहिस्थितम्। लक्ष्मीपते वसुदेव नंदन प्रभो, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। केशव, यदि आप प्रसन्न है तो गोविंद, अब मेरे यज्ञ करने से क्या लाभ हो। अब यज्ञ करने से क्या फायदा है, आप प्रसन्न है तो। देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, कहता है अब यज्ञ से क्या खराब। श्रीपते वासुदेवाद्य धन्योहम ते कृतः प्रभो किम मे यज्ञ न गोविंद यदि तुष्टोसि केशव। आप जगदीश्वर का दर्शन हो जाने पर, आपका नाम लेने पर, आपके चरणों में नमस्कार करने पर तथा आपका गुणानुवाद सुनने पर करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान का पुण्य यूं ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अब एक यज्ञ से क्या करना है, करोड़ों यज्ञों का फल तो प्राप्त हो जाता है आपके नाम लेने से, आपको नमस्कार करने से। दृष्टे तो ये जगन्नाथे कीर्ति दे नमिते श्रुते यज्ञ कोटि कृतम पुण्यम भवति तीन संशयः। जनार्दन, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे यज्ञ में कार्य करूंगा, तो महाविष्णु ऐसा कीजिए कि इन दोनों घोड़ों को, मुझको और मेरे पुत्रों को और मेरी पत्नी को, इस महान जन समुदाय को, यज्ञकर्ताओं को और यज्ञ की सामग्रियों को अपने हाथ से पकड़कर अपने हृदय में निविष्ट कर लीजिए। तो या प्रोक्तम कर्म करता तथा कुरु जनार्दन तुरंगो माम च मत पुत्रान मत प्रियाम च महाजनम गृहीत्वा यज्ञ कर्तृंसा यज्ञोपकरणानि च सुकरेण महाविष्णु हृदयम संनिवेशयन्। गोविंद, यदि मैं आपको पाकर भी यज्ञ में लग जाऊं तो वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण मेरी हंसी उड़ाएंगे। यहाँ के जो वेदों के विद्वान ब्राह्मण है वो हंसी उड़ाएंगे कि भगवान को छोड़कर यज्ञ कर रहा है, कितना मूर्ख है। भवन्तं प्राप्य गोविंद मया चेत् क्रियते कृतो प्रहस्यसि प्रशिष्चन्दिमाम विप्रा वेद वेदांग पारगाम। जनार्दन, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सर्दी से पीड़ित होने पर प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर चिंगारियों का सेवन करेगा। कितना बढ़िया, सर्दी में अगर आप कांप रहे हो तो अग्नि को छोड़कर की चिंगारी तापोगे, कौन चिंगारियों को तापेगा है? उसी प्रकार प्यास से व्याकुल होकर गंगा जल को छोड़कर के ओस कणों की ओर कौन दौड़ता है? उसी प्रकार से यज्ञ क्या है, चिंगारी के समान है, आप अग्नि के समान है, और जाड़े में कोई व्यक्ति है तो आपका सेवन करेगा। या गंगा जल प्यासा है, गंगा जल को पिएगा कि ओस कणों को पिएगा? ओस कण मैंने यज्ञ है और गंगा जल आप है, प्यासा व्यक्ति जो है आपको पाएगा। महंत मग निमुत्र जय हिमेन परिपीडित का से वेद नरो मोढ़ो विस्फुलिंगान जनार्दन त्रिशतो जानवी तो यम हेत्वा निहार मा ब्रजे। हाँ, जो मंद बुद्धि दोनों घोड़ों को पाकर आप माधव की अवहेलना करके दो अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा वो यमराज के दंड का पात्र होगा। दो अश्वमेध यज्ञ करने से क्या फायदा आपको छोड़ करके है? तो यमराज दंड देंगे अगर आपको छोड़ करके मैं दो अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो। भगवान, मेरा ये मूर्ख पुत्र युद्धस्थल में आप और अर्जुन दोनों को छोड़कर चला आया था, परंतु अपने किसी उत्कृष्ट भाग्य के उदय होने से मुझे आप दोनों नर नारायण का दर्शन प्राप्त हो गया। पुत्र को मैं कृष्ण पार्थ त्यक्तायुधे समागत भाग्योदयान मया दृष्ट नर नारायणा विमान। कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप जगत गुरु एवं ब्रह्म स्वरूप है, आपको प्रणाम है। आप हजारों ब्रह्मांड गोलकों में व्याप्त हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सृष्टि के कर्ता पालक और संघर्ता हैं तथा अन्न जल आदि अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करने वाले भी आप ही हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष ब्रह्मणे गुरवे नमः ब्रह्म गोलोक सहस्त्र फलिताय है नमो नमः हंत्रे गोप्त्रे नमस्ते स्तु सृष्टिकर्त्रे प्रमीधुसे। नाथ, आप अंतरहित और सर्वत्र परिपूर्ण हैं, आप वेद स्वरूप निश्वास प्रकट करने वाले शेष रूपी सैया पर शयन करने वाले हैं, आप श्रीधर को नमस्कार है। अनंताय सुपर्णाय वेद निश्वास कारिणे श्रीधराय नमो नाथ शेष मंचक साईने। लवणासुर का वध करने वाले शांत स्वरूप और समस्त कलाओं से संपन्न आपको मेरा प्रणाम है, आप ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान द्वारा ही जानने में आते हैं तथा काल पर भी विजय पाने वाले हैं, आपको मेरा अभिवादन है। ये दृश्य जगत आपका ही स्वरूप है, श्रुतियों स्मृतियों द्वारा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि परंपरा को स्थापित करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। लवणग्नाय शांताय नमस्ते कलिताय च ज्ञानाय ज्ञान गम्याय नमः काले जिताय च नमो दृश्याय वेद्याय नमः परंपराय च। उस समय जब राजा ने विश्वात्मा मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की तब भगवान श्री कृष्ण का चित्त प्रसन्न हो गया है। हाँ, वे जगदीश्वर अर्जुन को राजा की भक्ति का दर्शन कराते हुए उनके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उस रत्नपुर में 3 रात तक ठहरे रहे। ये रत्नपुर है, ये नगर का नाम है रत्नपुर, जहाँ के राजा थे मयूर ध्वज। 3 रात तक ठहरे भगवान अर्जुन के साथ वहां। एवं सदा दिन विश्वात्मा मधुसूदन प्रसन्नात्मा भवत कृष्णो भक्तिम पार्थाय दर्शन त्रिरात्रम चास्त्र भक्त्या तुष्टो जगत प्रभु। फिर राजा मयूरध्वज ने अर्जुन को गले लगाया और अपनी सारी संपत्ति और जीवन भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। ये है सन्यासी। भगवत गीता में जिस सन्यास की बात भगवान ने कही अर्जुन को वही दिखाते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल। तो भगवत गीता थ्योरी है और फिर प्रैक्टिकल भगवान दिखाते हैं। देखो कितना प्रैक्टिकल भगवान ने किया, कहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और पूरी दुनिया भर में घूमते फिरे और रत्नपुर में राजा मयूरध्वज के यहाँ जाकर के अर्जुन को दिखलाया कि सन्यासी कैसा होता है। उसकी पत्नी भी सन्यासी, उसका पुत्र भी सन्यासी है, राजा सन्यासी, तीनों सन्यासी, बहुत बड़े सन्यासी हैं। केशवे न समम पश्चात प्रय बाजी पालने दत्वा कृष्ण करे सर्वम चित्तम जीवित मे विचम सुरेत भी सहित तो राजा पार्थ मालिंग चांग्रत। तो इस तरह से हमने सुना एक व्यवहारिक घटना एक सन्यासी के जीवन की कि कैसा सन्यासी होता है। तो आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? उनका कहना है कि जो कथा सुनी थी पहले राजा महिरोधस की, तो उसमें यह था कि राजा और रानी मिलकर के अपने बेटे को चीरते हैं। नहीं, लेकिन कथा जैसी है वैसी मैंने सुनाई और संस्कृत के श्लोक भी मैंने सुनाए, तो कथा ऐसी प्रकार की है जैसी है, लेकिन बेटा भी कम नहीं है इतना समझ लो, पत्नी भी कम नहीं है। तीनों के तीनों जना मतलब महान भक्त हैं, कोई मतलब तुलना ही नहीं है, कोई कम नहीं है, स्त्री भी कम नहीं है और पुत्र भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता वैसे। यहाँ पर है कि पत्नी और बेटा दोनों मिलकर के आप वो चीर रहे हैं राजा को, है ना? तो जैसी है वैसी मैंने सुनाई है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि और जगह क्यों नहीं दिखता है कि लड़का और पत्नी उसको चीर रहे हैं, राजा को चीर रहे हैं, और जगह क्यों नहीं दिखता? ये बहुत बड़ी परीक्षा है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। और भगवत गीता में भगवान ने आज के श्लोक में बताया है, सन्यासी नाधिक क्षति निष्कर्म सिद्धिम पराम, कर्म बंधन से कोई व्यक्ति छूटता है। तो मतलब इतने जो है ना ऊंचे धरातल पर हैं कि अपने शरीर को जो है ना वो कुछ नहीं मानते हैं कि शरीर जो है ना मतलब छूट रहा है, इतने मतलब ऊंचे धरातल पर हैं। तो ऐसे और भी कई उदाहरण है, किसी दधीचि मुनि ने अपनी हड्डियां दी हैं इंद्र को मांगने पर, अपनी हड्डियां दी, अपने शरीर की हड्डियां दी हैं। तो ये इतने बड़े मुनि थे दधीचि, बड़े तपस्वी थे, लेकिन ये जो राजा हैं मयूराध्वज ये किसी प्रकार कम नहीं है। किसी बड़े से बड़े जो सन्यासी हैं, कोई भी बड़े से बड़ा जो है ना तपस्वी हो, उससे किसी प्रकार कम नहीं है राजा। और भगवान की भक्ति से कृष्ण भावना मृत में जो है ना कोई व्यक्ति इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है। और प्रजा की जो आसक्ति है राजा से, तो इससे प्रजा भी वैकुंठ में जाएगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के।